तफसीर सूरत फातिर। सूरत फातिर मक्की सूरत है। इसके 5 रुकू और 45 आयात। जबकि अल्फाज और कलिमात की तादाद 977, 977, हुरूफ 3130, 3130। इस सूरत का नाम फातिर पहली आयत के लफ्ज से लिया गया है और इसका दूसरा नाम अल मलाइका भी है, और अल मलाइका भी पहली ही आयत में बयान हुआ है। इस सूरत का मौजू और मजमून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावते तौहीद के मुकाबले में अहले मक्का और मक्का के सरदारों का जो रवैया था उस पर उन्हें तंबीह और मलामत की गई है और उन्हें समझाया गया है कि तुम रसूल की दावत पर ईमान लाओ और अगर ईमान नहीं लाते तो तुम्हारा अपना ही नुकसान है। और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात से और इंसान की जात से दलाइल दिए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि अगर कोई हदायत नहीं लाता तो उसका अपना ही नुकसान है, बस आप अपना फर्ज जो है जो अदा कर रहे हैं और आप अदा करते रहें, और अगर कोई ईमान नहीं लाता तो आप परेशान ना हो, और साथ साथ ईमान लाने वालों को खुशखबरी दी गई है। आप देखिए पहली आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द और तारीफ से पहली आयत का आगाज होता है कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है। फातिर समावाती वल अर्दी, जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है। जाएलिल मलाइकती रुसुलन, फिर फरमाया जो फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, पैगाम रसा बनाने वाला है। उली अजनेहतिन, परों वाले, मसना दो दो व सुलासा और तीन तीन व रुबा और चार चार। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला और फरिश्तों को पैगाम रसा मुकर्रर करने वाला है। ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू हैं, यजीदु फिल खल्की मा यशा, वो अपनी मखलूक की साख में जैसा चाहता है इजाफा करता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आप देखिए कि आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक ये बात बताई गई है कि तारीफ और शुक्र जो है वो अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, और साथ ही दूसरी बात कि वो अल्लाह जो खालिक ही नहीं, मालिक ही नहीं, बल्कि फातिर है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है वो फातिर की सिफ्त इस्तेमाल की गई है। फातिर, फा फा रा, इसके मानी है तराश खराश कर, खूबसूरत तखलीक करना। कुरान में पैदा करने के लिए 6 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें से पहला बरा है जिसे बारी भी कहते हैं। आपने पीछे भी पढ़ा था ये लफ्ज सूरत अल बकरा में भी, और उसमें आपने पढ़ा था फक्तुलू अनफुसकुम जालिकुम खैरुल्लकुम इंदा बारिकुम। दूसरा है बदा,
دال عین، کسی نمونہ اور کسی تخلیق کے بغیر بنانا. تیسرا ہے فطرہ، چوتھا ہے خلقہ، اور پانچواں ہے انشا، اور چھٹا ہے زرعہ. اب یہاں پر جو ہے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ کی متعارف کروائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ فاطر ہے، تراش خراش کر خوبصورت بنانے والا ہے. اصل میں مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام دینے کے لیے قاصد کے طور پر اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا، وہ میری مخلوق ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پیغام کو لے کر جائیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ فرشتے جو ہیں کیسے ہیں، کوئی دو دو بازو والے، کوئی تین تین والے، اور کوئی چار چار والے. اور پھر فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسی چاہتا ہے ساخت میں اضافہ کرتا ہے. کیوں؟ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو اصل میں شیطان نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ ایک حیثیت ہے، وہ دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اسی لیے لوگوں نے لات منات جیسے جو نام تھے کیا کیا کہ فرشتوں کی فرضی تصویریں بنا لی اور پھر ان کی عبادتیں کرنے لگے، ان کو دیوی اور دیوتا کا مقام دے دیا. لا آف نیچر کی تعظیم میں، جیسے آج کے دور میں بھی قانون فطرت یا لا آف نیچر کی تعظیم اسی گمراہی کا جدید ایڈیشن ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ فرشتے ہوں یا کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ سب اللہ کی جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کہنا قرآن کا کہ حمد اللہ کے لیے ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ تعالی کی جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ یاد رہے کہ تعریف اور جو خوبی ہے، جو بڑائی ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ نمبر ون، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو تراش خراش کر خوبصورت بنانے والا. ایسے ہی نہیں بس کسی چیز کو گھڑ کر ایسے ہی رکھ دے، بلکہ تراش تراش کر خوبصورت بنانے والا. اور الارض یہاں پہ اسم جنس ہے، یعنی تمام آسمان اور زمین کا وہ بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے. پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی حکومت جو ہے وہ ہر ایک پر ہے. جیسے فرشتے ہیں تو لوگ کیا کر رہے تھے کہ فرشتوں کے ساتھ شرک کر رہے تھے، انہیں دیوی دیوتا بنا کر ان کی پوجا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کائنات میں فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کے، اللہ جل شانہ کے احکام کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو نافذ کرتے ہیں. جعل الملائکۃ رسلا، کہ اس نے فرشتوں کو رسول بنایا. را سین لام، رسول جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا، بھیجنا. رسول واحد ہے، رسول اس کی جمع ہے. تو رسول سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، نبی بھی ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے رسولن، پیغام لے کر جانے والا. اچھا آگے دیکھیں، اولی اجنحتن، اولی اجنحتن آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اس کا روٹ ہے جیم نون ہا، اس کے معنی ہے پرندے کا پر بازو. اب آپ دیکھیں کہ پھر اگر اس کے دونوں بازوؤں کا ذکر ہو، ایک تو جناحن ہوگا اور دو جناحین، تو پرندے کا ہاتھ کہہ لیں یا پرندے کا بازو کہہ لیں. تو اجنحتن جو ہے اس کے معنی ہے بازو کے، پروں کے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے جو پر ہیں دو دو بھی ہو سکتے ہیں، مثنا، ثانون یا سے ہے، مثنا دو دو ہو سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی کہا کہ ثلاثا، تین تین بھی ہو سکتے ہیں، वरुबा और चार चार भी। इस हिस्से में यहां पर जो है फिर इतना ही नहीं कि दो दो तीन तीन चार चार, बल्कि यजीदु फिल खल्की मा यशा, मजीद ये बात कही कि अल्लाह जो है, अल्लाह को इस बात का इख्तियार है कि वो अपनी मखलूकात की तखलीक में जितनी चाहे और जिस किस्म की चाहे ज्यादती करे। तो यहां पर जो है कि यजीदु फिल खल्की मा यशा, कि वो अपनी मखलूक की साख में जैसी चाहे जो है उसमें इजाफा करे, तो इसके क्या मानी है? मुफस्सरीन कहते हैं कि यजीदू का लफ्ज यहाँ पर आया है परों के लिए, कि फरिश्तों के परों की या बाजुओं की इंतहाई तादाद सिर्फ दो दो तीन तीन या चार चार नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज फरिश्तों को इससे ज्यादा जो है वो बाजू अता किए हैं। जैसे ये बुखारी की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा इस शक्ल में देखा कि इनके 600 बाजू थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हुजूर ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दो मर्तबा इनकी असल शक्ल में देखा है और इनके 600 बाजू थे और वो पूरे उफक पर छाए हुए थे। इसे तिर्मिजी ने रवायत किया है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, और बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादिर है, जैसा चाहे बनाए, दो दो परों वाला, तीन तीन वाला, या चार चार वाला, या फिर 600 वाला। तो ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत के करश्मे है। तो अलहम्द जो है इसका ताल्लुक फातिर से है, और फातिर कौन है? पहले पहल इजाद करने वाला, बिल्कुल बगैर नमूने के जो है वो बनाने वाला। जैसे बगैर नमूने के अगर किसी चीज को बनाया जाए तो मुश्किल है ना, लेकिन अल्लाह की कुदरत के करश्मे देखें कि आसमान और जमीन को सबसे पहले बगैर नमूने के अल्लाह ने बनाया, और उसी अल्लाह ने फरिश्तों को भी बनाया, और उस अल्लाह के लिए इंसानों को दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है? फिर अल्लाह ताला के मुख्तलिफ फरिश्ते हैं जो अल्लाह उनको मुख्तलिफ मुहिमात पर भेजता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मिकाइल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, इज़राइल अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह ताला जिस फरिश्ते को जो जिम्मेदारी देना चाहता है वो उसको देता है, और वो क्या करते हैं कि वो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से अदा करते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं, और वो अल्लाह की अतात पर जो है वो राजी हैं, चाहते हुए या ना चाहते, क्योंकि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो उनको अपना देवी या देवता बनाना, या फिर उनसे कुछ उम्मीदें रखना, या उनको अल्लाह की बेटियां कहना, या जो है ये समझना कि वो अल्लाह के यहाँ कुछ सिफारिश कर देंगे, तो ये सारी बातें जो हैं वो क्या हैं? ये गलत हैं। तो यहाँ पे दरअसल एक तरफ शिर्क की तरदीद है, दूसरी तरफ ये बात है कि जो रब ये कर सकता है वो कयामत भी ला सकता है। तो आप देखें कि सूरत अल-अनाम की पहली आयत का जो आगाज है वो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो अपनी जो खूबियां हैं, अपनी जो तारीफ है उसको बयान किया है, और उसमें भी आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं सूरत अल-अनाम की पहली आयत में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्दा وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ। تو وہاں پہ بھی آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی حمد کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد کی طرف ہی جو ہے وہ اشارہ ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ توحید پرست بننا چاہیے۔ پھر فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کہ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ، کہ جو کھول دیتا ہے کون؟ اللہ اللہ، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے۔ تو اللہ جو ہے اس کا تعارف کیا ہے کہ وہ کھول دیتا ہے لوگوں کے لیے، من رحمتن رحمت، تو اللہ جس کی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے
जो है वो अल्लाह खोलने वाला है। मा यफ्तहिल्लाहु, जो वो खोल दे, कौन? अल्लाहु अल्लाह, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिर मिन रहमतिन, अपनी रहमत में से। तो अल्लाह जब अपनी रहमत का दरवाजा लोगों के लिए खोल दे, फला मुमसिक अल्लाह, बस नहीं कोई उसको बंद करने वाला। वमा युमसिक, और जिसे वो बंद कर दे, वमा और जो युमसिक वो बंद कर दे, फला मुरसिला लहू मिन बादे, बस नहीं खोलने वाला उसको इसके बाद। तो जिसको अल्लाह बंद कर दे, फिर उसके बाद उसको कोई खोल नहीं सकता। वहु अल अजीज अल हकीम, और वो गालिब और हिकमत वाला है। इस सिलसिले में आपको वो दुआ तो याद होगी, इसको आप याद कर लें, बड़ी खूबसूरत दुआ है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, और इस दुआ को जो नकल करते हैं रावी हैं मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु, ये सहाबी थे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, वला मुगिया लिमा मनअत, वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, बादशाही और हम्द उसी के लिए है, और वो हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जिसे तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं, जिसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। अगर आपको, अगर मुझे और हमारे जितने मुसलमान हैं उन्हें इस बात पर यकीन हो जाए कि देने वाला भी अल्लाह ही है और रोकने वाला भी अल्लाह ही है, लेने वाला भी अल्लाह ही है, अगर इस चीज पर यकीन हो जाए तो ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ही देने वाला और अल्लाह ही लेने वाला है। तो तमाम नेमते जो हैं उनको देने वाला, उन्हें वापस लेने वाला, उनके खजानों को बहा देने वाला और उनको रोक लेने वाला अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। वही मुनम है, वही मोती है, वही माने है, वही काबिद है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मोतिअ लिमा मनअत। और ये बात ऐसी है कि इसकी सच्चाई में जरा बराबर जो है वो शक नहीं है। तो इस ये आयत भी क्या बता रही है कि बात फजल की हो, बात रहमत की हो, बाज किसी जॉब की तलाश की हो या किसी रिश्ते की हो, बाज जो है वो औलाद की हो या किसी भी नेमत की हो, तो हर फजल, हर रहमत, हर नेमत का दरवाजा खोलने वाला और नेमतों को बख्श देने वाला अल्लाह ही है, और तमाम नेमतों को और तमाम फजाइल को रोक लेने वाला भी अल्लाह ही है। अगर वो किसी को अपनी रहमत से महरूम करना चाहे तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको जो है वो रहमत दे सके। फरिश्ते, जिन, जिसे उस जमाने के लोग जो थे वो ये समझते थे कि उनके पास भी कुछ इख्तियारात हैं, वो नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आयत नंबर 2 में भी ये बात जो है बताई जा रही है कि तमाम रिज्क, फजल, इख्तियारात, इक्तदार, सारी चीजें जो है वो अल्लाह के हाथ में हैं। तो क्या करो लोगों, अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दो। वहु अल अजीजुल हकीम, और वही गालिब और हकीम है। तो जिस रब का इतना खूबसूरत तारुफ है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उसकी इबादत करनी चाहिए। या अय्युहन नास उज़्कुरू निअमतल्लाह, या अय्युहन नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, लोगो अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो। या अय्युहन्नासु, तमाम लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, क्या करो? उज़्कुरू, याद करो, नेमतल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो तुम पर की गई। तो जितनी भी नेमतें हैं उन सबको देने वाला अल्लाह है, खालिक भी वही, राजिक भी वही। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उस अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाही। अब एक सवाल है कि
क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है? हल जो है ये जो है वो हर्फ इस्तफाम है, सवाल के लिए आता है। हल क्या है? मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और है पैदा करने वाला? यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, जो आसमानों और जमीन से तुमको रिस्क दे। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद मगर वही। फअन्ना तुफकून, फिर तुम कहां से धोखा खा लेते हो? तो ये जो आयत है इसका मतलब ये है कि जब खालिक अल्लाह, जब राजिक अल्लाह, जब मालिक अल्लाह, तो फिर जो है तुम्हारे अंदर जो है तौहीद और आखरत का इनकार कैसे पैदा हो जाता है? फअन्ना तुफकून, फिर तुम कहां से धोखा खाते हो? फिर तुम क्यों अल्लाह की नाफरमानी करते हो? तो फरमाया जा रहा है कि एहसान फरामोश ना बनो, नमक हरामी ना करो और अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह की बंदगी करो। जब नेमते देने वाला वो है तो फिर नेमते उसी से मांगो, और जब वो नेमतों से महरूम करने वाला भी वही है तो फिर जो है वो अल्लाह ही से जो है वो डरो। तो आप देखिए कि आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक एक ही मजमून जो है वो बयान किया गया है कि दरअसल कोई भी चीज की जरूरत है, हत्ता कि जूते का तस्मा क्यों ना टूट जाए, मामूली से मामूली चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, सब चीजें अल्लाह ही से मांगनी चाहिए और फिर अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए और शिर्क नहीं करना चाहिए। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, और बड़े ही मशहूर मुफस्सिर हैं, और इन्होंने जो है वो कहते हैं कि तफसीर लिखी, और तफसीर लिखकर जो है इन्होंने सोचा कि अब उस तफसीर को जो है वो छुपवाना चाहिए, तो अब उसको छुपवाने के लिए फिक्रमंद थे, और फिर इन्होंने जो है वो जैसे चाह रहे थे कि कोई इनको स्पॉन्सर कर दे ताकि ये इनकी तफसीर जो है वो छप सके और लोग जो है वो उससे फायदा उठा सके। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो इनको किसी ने बताया कि इंडिया में है कोई स्कॉलर और वो जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो और फिर इनके ये जो प्रोजेक्ट है इसको फैला सकते हैं। तो इन्होंने जब ये बात सुनी तो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि ये यही चाहते थे कि इनकी जो ये चीजें हैं इनको फैलाया जाए, तफसीर को फैलाया जाए। तो कहते हैं कि इन्होंने जो है वो शिप वगैरह में ये बैठे, और इस इधर इधर को रहते थे, इधर यमन ताइफ साइड, इस साइड पर यमन वगैरह के इलाके में, तो यहाँ से ये उठे और सफर करना शुरू किया। फिर जहाज में बैठे हुए थे और साथ में इनके कोई आदमी बैठा हुआ था, और आम सा कोई आदमी था, तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि मैं इस तरह से मैंने तफसीर नाम वगैरह यानी उन्होंने पूछा, तो जब नाम उस आदमी ने सुना बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा वो आदमी कि वही वो जो मशहूर इमाम बगवी हैं, क्या तो आप वही हैं? कहने लगे कि हाँ। पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि इस तरह से मैंने लिखी है और मुझे उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, और मुझे किसी ने इंडिया में बताया तो मैं वहां का सफर कर रहा हूँ ताकि कोई इसको छुपवा के जो है ना स्पॉन्सर कर दे, यानी कोई इसका खर्चा वगैरह दे के इसको आम पब्लिक में फैलाए। तो वो आम सा जो आदमी था उसने कहा कि मुझे इसकी जरा तफसीर बताएं। इन्होंने बहुत बड़ी तफसीर जो थी वो लिखी थी, कई सफात पे मुश्तमिल, कई जिल्दों में मुश्तमिल। तो उसने कहा मुझे आप इसके मानी बताएं, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। तो इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इन्होंने उसकी तफसीर करनी शुरू की, आयात भी हदीस भी उसको बयान करते गए बयान करते गए, और फिर एकदम जो है ना खामोश हो गए, कहने लगे कि मुझे जो है ना समझ आ गई है। और फिर ना जाके जो जहाज का कैप्टन था उसको कहने लगे कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, जो शिप है यानी मुझे वापस जाना है। तो वो जो आदमी साथ बैठा था कि और वो जो सात लोग थे बड़े हैरान हुए कि पहले जा रहे थे अब वापस तो क्यों? तो कहने लगे कि मुझे समझ आ गई है कि इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। उस आदमी ने जैसे बाज़ुकात एक आम आदमी वो बात कह देता है जो दूसरे की समझ में नहीं आती, बहुत बड़े आदमी की भी समझ में नहीं आती, यानी जहन में उस वक्त नहीं आ रही होती, हालांकि बहुत ही नेक थे मुत्तकी थे, तो कि अल्लाह से मांगे कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। और फिर जो है फिर ये वापस आए और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि फिर किसी ने आदमी ने आके इनका दरवाजा खटखटाया, और वो जो आदमी आया उसने कहा कि मुझे जो है वो फलां जो किंग है इंडिया का उसने भेजा है और वो आपकी जो तफसीर है उसको छपवाना चाहता है। तो असल में बात यह है कि अल्लाह ही से अपनी तमाम जरूरियात और अपनी अपनी तमाम जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जरूरतें हैं, सब अल्लाह के सामने बड़ी यकसुई के साथ, बड़े एतमाद के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी गिरियाजारी के साथ, आजजी के साथ अल्लाह के सामने रखनी चाहिए। और हकीकत यह है कि अल्लाह ही तमाम जरूरतों का पूरा करने वाला है, और इन आयात में भी यही बात जो है वो कही गई है कि तुम अल्लाह ही को अपना खालिक, मालिक और माबूद बनाओ और उसी की अताअत करो, क्योंकि तमाम नेमतें खा बारिश हो या रिज्क, इसी तरह वही अंबिया, हदायत, सारी चीजें अल्लाह देने वाला है। तो जब अल्लाह देने वाला है तो लोगों अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करो। फिर इसके बाद आयत नंबर 4 से लेकर 8 तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि अगर आपकी कौम के लोग आपको झुठलाते हैं तो जो पहली कौमें थी उन्होंने भी झुठलाया, फिर उनका अंजाम क्या हुआ, तो आप इनके झुठलाने के गम में अपने आप को घुलाएं नहीं। आयत नंबर 4, वही यकज़्ज़िबू का, और अगर ये आपको झुठलाते हैं, कौन? अहले मक्का। का की जमीर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है। वही यकज़्ज़िबू का, और अगर ये झुठलाएं तुझको, फकत कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन कब्लिक, तो ये कोई नई बात नहीं है, आपसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जब कभी कोई अल्लाह के पैगाम को लेकर उठा तो लोगों ने उसका इनकार किया। तो ये लोग जैसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बात नहीं मानते और ये शिर्क कर रहे हैं, और ये अहले मक्का कह रहे थे कि आपने नबुवत का झूठा दावा किया है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत तसल्ली दे रहे हैं, फकत कुज्जिबत रुसुल मिन कब्लिक, तो इससे पहले भी बहुत से रसूल जो हैं वो झुठलाए जा चुके। वा इल्लल्लाहि तुरजाउल उमूर, और सारे मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ जो है वो रुजू होने वाले हैं, और सारे काम अल्लाह ही की तरफ जो है वो लुटाए जाएंगे। तो इनकार करने वाले जो हैं उनके अमल, उनके रवैये जो हैं वो सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। इससे ये बात पता चलती है कि फैसला लोगों के हाथ में नहीं है कि वो जिसे चाहे झूठा कह दें और वाकई वो झूठा हो जाए, फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। वो आखिरकार बताएगा कि झूठा कौन था, और जो हकीकत में झूठे हैं उन्हीं का अंजाम जो है फिर दिखाएगा उनको। वाइल्लाही तुरजाउल उमूर, सारे मामलात आखिरकार अल्लाह की तरफ जो है वो पेश होने वाले हैं। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि सारे वो लोग जो इनकार कर रहे हैं वो जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की किताब को झुठलाकर कहाँ जाएंगे, सवाए बर्बादी के कहीं और नहीं, और सवाए अल्लाह के हजूर पेशी के और कहीं नहीं। या अय्युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक, लोगो अल्लाह का वादा यकीनन बरहक है। कौन सा वादा? यहाँ पे किस वादे का जिक्र हो रहा है? आप जरा सोचे, आखरत का वादा, क्योंकि पीछे ऊपर ही आयत नंबर 4 में कहा वाइलल्लाहि तुरजाउल उमूर के सारे मामलात अल्लाह के हजूर पेश होंगे, और यहाँ पे जो है वो दोबारा उसी का जिक्र किया जा रहा है कि लोगो अल्लाह का वादा जो है यकीनन बरहक है। इसके मानी है कि कयामत जो है वो आकर रहेगी, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातु दुनिया, लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। तगुर्रन्नकुम, ये बहुत अहम है कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें फरेब ना दे। फला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। अब आप देख लीजिए कि यहां पे जो है ये बात बताई जा रही है कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा ना दे, इसके क्या मानी है? आप ये पहले भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि एक लफ्ज है गुरूर का और एक लफ्ज है गरूर का, दोनों में जो है वो फर्क है। और आप देखें कि यहां पर जो है ये जो लफ्ज है इसके मानी क्या है। ये लफ्ज धोखे के लिए इस्तेमाल होता है, गैन रा रा, इसके मानी है किसी को गाफिल पाकर उससे अपना मकसद हासिल करना, फरेब देना, किसी को फांस लेना। और गुरूर, गुरूर जब आता है तो इसके मानी होते हैं धोखा देना, और जब गुरूर आता है गैन पर फतह होती है तो मानी होते हैं धोखा देने वाला। तो ये धोखा देने वाला कौन है? कहा कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में धोखा देने पाए। अच्छा, दुनिया की जिंदगी कैसे धोखा देती है? अभी आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिनको पता है कि जापान में एक हादसा पेश आया है? क्या हादसा है, किसी को पता है क्या हुआ है वहां पे? आप देखें कि एक कयामत है जो जापान में आई है ना, और आप देखें तो हंड्रेड के हिसाब से, बिल्कुल ठीक, वहां पे सुनामी आया है, अर्थक्वेक है और जलजला है, सैलाब है। और कैसा है, आप में से कितने लोगों ने उसकी वीडियो और तस्वीरें देखी हैं? जिन्होंने नहीं देखी आप जरूर देखें। ऐसे लगता है, मैं उसको देख रही थी और पता नहीं कितनी रात गुजर गई और उनकी 300 या कितनी उन्होंने वो डिफरेंट सीन डाले हुए थे, और मैं एक एक को देख रही थी कि कैसे गाड़ियों की गाड़ियां हैं, पानी का रेला है जो उनको बहा कर ले जा रहा है, कभी आग दिखा रहे हैं, कभी पानी, बस्तियों की बस्तियां हैं जिनको बहाया जा रहा है, लोग बह रहे हैं, कैसे बड़े बड़े शिप हैं जो कि बहते जा रहे हैं और कोई चीज उसके सामने जो है वो रुक नहीं पा रही ना। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और आप देखिए कि साइंस धरी की धरी रह गई, और कहते हैं 10 साल पहले से इनको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पे किसी वक्त कुछ होने वाला है। इन्होंने तैयारी भी की हुई थी और तकरीबन 900 जैसे फी घंटा के हिसाब से किलोमीटर, यानी उससे ज्यादा उसकी तेज रफ्तार है। आमतौर पर देखिए आप गाड़ी चलाते हैं तो अगर उसकी स्पीड जो है वो 60-70 या 100 हो जाए, और 100 से जरा सी ऊपर हो जाए तो क्या होता है ना। तो आप देखें कि ये जो था इनका ख्याल क्या था, यानी गाड़ियां धरी की धरी रह गई, कैसे वो खड़ी हुई थी, कैसे सारी उड़ रही हैं, बह रही हैं, जा रही हैं, कैसे, और यानी लोग मरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, क्या क्या हालात हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं सोच रही थी कि कभी ख्याल भी नहीं आता कि वाकई इस समंदर के नीचे जो है अभी जलजला आएगा, लावा जो है वो आएगा और तबाही जो है वो मचेगी। तो यानी आप में से जिसने नहीं देखा आप जरूर उसको देखें। और जैसे आपको याद होगा कि चाइना में आया था, फिर कश्मीर में आया था, इधर हेटी में आया था, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं कि ये चीजें बता रही हैं कि दुनिया की कोई चीज इंसान के पास हमेशा रहने वाली नहीं है ना, हर चीज को एक जवाल है। और कयामत के बारे में भी तो ये आता है ना कि अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कमल कारिया, और दुनिया की चीजें धोखा ना दे। मसलन आप अपने ऊपर सोचें कि आपकी जो जवानी है वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। आप देखें कि एक वक्त था आप भागा करते थे, आप दौड़ा करते थे, आप भागना चाहते हैं भाग नहीं पाते ना। पहले आप बहुत तेजी से काम कर लेते थे, अब आप उतनी तेजी से कर नहीं पाते। आंखें जो है नजर में फर्क आ रहा है, आ रहा है ना, नजर में फर्क आ रहा है, आपकी रफ्तार में चलने में फर्क आ रहा है, आपके जिस्म में जैसे जो जिस्म के बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनकी जो एक्शन है, उनकी जो कुवत है, उनकी जो कारकर्दगी है, उसमें फर्क आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो है वो साथ छोड़ता चला जाता है। आज ही किसी औरत के बारे में पता चला कि उस बेचारी को कैंसर है और डॉक्टरों ने कुछ दिन बताए हैं ना कि बस पता नहीं कितने दिन, उसके चंद दिन बाकी हैं। गैब का इलम तो अल्लाह ही जानता है, मुसलमान तो हमेशा पुरउम्मीद रहता है। लेकिन आप देखें कि हादसात हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, और आज जो है वो मतलब आज के फिर इस दौर में हमें क्या करना चाहिए। आप देखें कि औलाद हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, माल आपके पास नहीं रहेगा, आप दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, घर आपके पास नहीं रहेंगे, गाड़ियां नहीं रहेंगी, जेवर नहीं रहेगा, सारा कुछ छोड़कर इंसान दुनिया में चला जाएगा, तो क्या करें? आइए हमेशा का सौदा करें, और वो क्या है? अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह को अपना वली बनाएं, अल्लाह को अपना वकील बनाएं, और अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, अपने मामला ठीक करें। जब मैं जापान में आने वाले जलजले को देख रही थी, घर बहते हुए घरों को देख रही थी, यानी घर हैं तो वो डूब रहे हैं, बह रहे हैं, शिप्स बह रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, यानी इंसान की हैसियत तो कुछ भी नहीं, तिनके से भी कम, पता ही नहीं इंसान कहाँ कहाँ गए, जो पता नहीं क्या कितने हजारों में लोग वहां पे मर चुके हैं। तो आप देखें कि ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, कि ये दुनिया, दुनिया का माल, इसकी रौनकें, इसकी दौलत, इसका असबाब सामान चीजें, ये हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगी। तो हमें जो है तो दुनिया की आरजी लज्जतों में खोकर अपनी आखिरत की जो खुशियां हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने रसूल और अपनी किताब के जरिए हमारी जो रहनुमाई की है, फिर उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। और होता क्या है? अच्छा, धोखा कैसे होता है? दुनिया की जिंदगी जो है वो कैसे धोखे में डालती है? जैसे जो है वो फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, जैसे कयामत की निशानियों में से ये है कि लोग गुनाह करेंगे लेकिन नाम तब्दील कर लेंगे, जैसे वो गुनाह नहीं है, है ना? तो असल बात क्या है कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। और बड़ा धोखेबाज कौन है? इबलीस है। यहाँ पे जो है अल गरूर कहा गया, तो ये इबलीस के लिए है। इबलीस कैसे धोखे में डालता है? सबज बाग दिखाता है, वसवसे डालता है, और फिर कहता है कि थोड़ी सी, ये छोटी सी तो एक बात है, बस ये एक गुनाह कर लो, फिर उसके बाद जो है तौबा कर लेना, फिर अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। आज एक माँ जो थी उससे मेरी बात हुई, और वो फूट फूट कर रो रही थी, बहुत दुखी, बहुत परेशान, उसकी जबान नहीं खुल रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जब उससे बहुत बात हुई तो फिर वो यही कह रही थी कि मैं कितने दिनों से चाहती थी कि बात करूं, लेकिन ये कि मैं चाहने के बावजूद जो है वो आपसे बात नहीं कर पाती थी, कि डायरी उठाती थी, फिर फोन उठाती थी, और फिर मैं खामोश हो जाती। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगी बस क्या बताऊं कि हम पे कयामत गुजर गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगी कि बेटी जो है वो एक ईसाई से शादी करना चाहती है, और आप बताएं ये हो सकती है? तो मैंने उसे कहा कि मेरी क्या हैसियत है कि मैं बताऊं? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहते हैं कि नहीं हो सकती, ये नहीं, मर्द के लिए जो है वो के मर्द के लिए तो गुंजाइश है कि अहले किताब की औरतों से, लेकिन औरत के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसमें फिर क्या है कि जो है वो मतलब औरत जो है उसको शैतान अब क्या धोखा देता है कि आज औरत जो है वो मर्द के बराबर आकर खड़े होने जाती है, और वो कहती है कि फिर यानी वो जो उसको हकूक है वो मेरे पास क्यों नहीं है? माँ ये कह रही थी कि बच्ची हमारी समझ नहीं रही ना, तो आप देख लें। और माँ इस बात पे रो रही थी कि सारी जिंदगी मेहनत की, मजदूरी की, कुर्बानी की, पढ़ाया लिखाया, और अब जो है ये वक्त ऐसा है कि बच्ची जो है वो बात नहीं मान रही ना, तो क्या करना चाहिए? तो अब आप उसमें देखें कि यानी जो चीज गलत है वो तो गलत ही है ना, बच्ची की खुशी के लिए या बच्चे की खुशी के लिए वो चीज जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया उसको जायज तो नहीं कह सकते ना। जैसे मेरी एक और पहले दोस्त ने एक दिन बताया था कि उनकी फैमिली में किसी ने, लड़की ने एक हिंदू से शादी की है ना, तो ऐसे शादी तो नहीं होती। और फिर किसी अभी पिछले दिनों एक और वाकया हुआ कि एक लड़की जो कि अच्छी पढ़ लिख जब गई, वकील बन गई, तो उसने जो है एक यहूदी डॉक्टर से शादी की है, और जब उनकी शादी हुई तो एक तरफ जो ज्यूश थे उनके जो स्कॉलर वगैरह थे वो आए, तो उन्होंने अपने तरीके से निकाह किया और लड़की ने अपने तरीके से किया, किसी मौलवी ने आकर कराया, तो क्या ऐसे निकाह हो जाता है? तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें जो हैं वो धोखेबाजी की चीजें हैं। और इसी तरह आप एक एक चीज के मामले में आप देख सकते हैं, जैसे शैतान ये धोखा देता है कि कोई नहीं आखिरत होनी, कोई नहीं हिसाब किताब होना, और ये कि यानी जो दिल चाहे वो करना चाहिए, और या फिर ये कि ये झूठा भरोसा कि अल्लाह तो बड़ा गफूर और रहीम है, जितने चाहे गुनाह करो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, या फिर ये कि हम तो बड़े ही अल्लाह के प्यारे हैं, बस जो चाहे कर लें। तो ऐ लोगो, इन्ना वाद अल्लाह हक, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और वो क्या है कि कयामत आकर रहेगी, फला तगुरन्नकुमुल हयात दुनिया, लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा ना देने पाए, कौन? शैतान। इन्ना शैतान लकुम अदुवन, दरहकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अब आप देखें कि जब किसी चीज के बारे में आपको किसी के बारे में पता चले कि वो आपका दुश्मन है, तो आप उससे क्या करती हैं? आप दुश्मन से प्रोटेक्शन चाहते हैं ना, आप उससे बचाव का इंतजाम करती हैं, आप डिफेंड करते हैं अपने आप को, आप अपना तहफ्फुज़ करते हैं। मसलन आप देखिए, छोटी छोटी चींटियां ही अगर घरों के अंदर आ जाती हैं, तो हम देखते हैं कि ये खाने के अंदर घुस रही हैं, हर चीज में घुस रही हैं, तो आप उसके लिए कितना इंतजाम करते हैं कि कैसे इससे बच जाए? मच्छर आ जाते हैं, आप समझते हैं यही हमारे दुश्मन है, आप कैसे उससे बचाव का इंतजाम करते हैं? क्या क्या कुछ आप नहीं करते। तो जिस चीज का भी आपको अंदाजा होता है कि ये नुकसान देने वाली है और ये सही नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि फिर आप उससे बचने की पूरी पूरी तदाबीर जो है वो इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इन्न शैतान लकुम अदुवन, दरहकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुवा, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। ये है असल बात, इसको आप सर्कल कर ले। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा शैतान को अपना दुश्मन समझो। अब आप देखें, जैसे अब आप देखें कि जैसे महकमा मौसमियात जो है वो स्नो से पहले बता देते हैं, पेशेन गोई कर देते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे मौसम होने वाला है, तो आप क्या करते हैं? नमक खरीद कर ले लेते हैं, आप घर में चीजें खरीद कर ले आते हैं, आप बाहर के ही हैं तो आप घर के अंदर आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिशें करते हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये रहमत है कि उसने हमें शैतान और उसकी चालों से जो है वो मुतनब्बे किया है, ताकि हम सद्दे बाप कर सकें। इन्नमा यदउ हिजबहू, बेशक वो दावत देता है हिजबहू अपने ग्रोह को, लियकूनू मिन असहाबिस सईर, ताकि वो दोस्तियों में शामिल हो जाएं। तो शैतान क्या करता है, वो जो है वो ये चाहता है, वो सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाता है ताकि जो उसके पीछे चलने वाले हैं वो भी दोस्तियों में शामिल हो जाएं। मिन असाबिस सईर, अब आप देखें कि सईर जो है वो जलने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना कफरू लहुम अज़ाबुन शदीदुन, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लहुम अज़ाबुन शदीद, तो उनके लिए सख्त अज़ाब है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, और जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, तो उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये कुरान का अंदाज है कि कुरान जो है वो क्या करता है, दो रास्ते बताता है, एक है हदायत का रास्ता और एक है शैतान का रास्ता, कुफर का रास्ता। और जो है यानी फिर ये अल्लाह ताला कहता है कि मैंने ये जो रास्ते बताए हैं ये मेरी क्या है कि ये मेरी रहमत है, ये मेरा फजल है। जैसे जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क दिया, इसी तरह रूह की गिजा के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, हदायत दी, ताकि लोग जो हैं वो अल्लाह के पास जाने से पहले अल्लाह के पास जाने की तैयारी कर लें। फिर आप देखें कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जिस तरह दो रवैये हैं, एक है रसूल की अतात करने वाले और दूसरे हैं शैतान के पीछे चलने वाले। تو جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، جو رسول کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک ہے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مغفرت، اور دوسرا کیا ہے؟ بڑا اجر. تو اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں نے جو نیک عمل کیے ہوں گے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر جو ہے وہ عطا کرے گا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ جو ہے بڑا ہی رحیم ہے، اللہ بڑا ہی کریم ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے، تو جنت کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ آپ کو اندازہ اس بات کا کہ جنت کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ جنت کے دروازے کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 100 درجے ہیں. اور جیسے آپ دیکھیں کہ ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چابی کے ٹیتھ ہوتے ہیں، کی کے ٹیتھ ہوتے ہیں نا. لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے، تو یہ جو ٹیتھ ہے نا گناہوں کی وجہ سے، جنت کے دروازے کی جو چابی کے کی کے ٹیتھ ہے نا، وہ گھس جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں. ٹیتھ کیسے صحیح ہوتے ہیں؟ عمل صالح جب کیے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ چابی سے اگر ٹھیک ہو جائیں، تو چابی سے دروازہ کھل سکتا ہے، ورنہ کھل نہیں سکتا. تو آمنو یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا، عقائد اپنے ٹھیک کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح کرنا، اچھے عمل کرنا. پھر عمل صالح جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے عمل جو اللہ کو راضی کر دیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، تو ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اور جب بھی حسن عمل کی بات ہو تو ذہن میں خیال آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ساری زندگی ایک دوسرے کا جو ہے وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے رہے، دنیا میں نہیں، بیسٹ فرینڈ تھے، بیسٹ فرینڈ شپ تھی ان کی. آپ کا کوئی ہے ایسا دوست کہ جس کے ساتھ نیکیوں میں آپ بھی دوڑ لگاتی ہیں؟ ہے کوئی آپ کی ایسی دوست؟ آپ اس بات کے لیے فکر مند ہوتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میرا یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، تو کس کو دوست بنانا ہے؟ نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے محبت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. اور ایک دن مسجد نبوی میں جو ہے وہ فجر کی جب نماز ہو گئی ختم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی یعنی اپنے گھر کی بجائے کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے، اور وہ خاموشی سے جا رہے تھے، تو یہ بھی خاموشی سے ان کو فالو کرنے لگے، پیچھے 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 پیچھے. اور آپ ذرا تصور کریں تو کتنی صبح یہ کہاں جا رہے ہیں. پھر وہ دیکھا کہ انہوں نے مدینے سے بھی باہر نکل گئے، اور ایک جھونپڑی سی تھی، ایک وہاں پہ گئے، ایک کاٹیج سی تھی، تو کیا باہر چھپ کر کھڑے رہے. پھر کچھ دیر تک جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر رہے، جب وہ باہر گئے تو ان کے باہر جانے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھونپڑی سے باہر نکل گئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھونپڑی میں جاتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، اور یہ جو شخص تمہارے پاس آیا تھا یہ کون تھا، اور یہ کیا کرنے کے لیے آیا تھا. اس طرح ان سے دو تین سوال پوچھتے ہیں. تو وہ عورت جو ہے ایک بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں اندھی ہوں، نابینا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار، کوئی میرا بچہ، کوئی نہیں ہے جو میری دیکھ بھال کرے، اور یہ ہے یہ کوئی آدمی ہے جس کو میں نہیں جانتی یہ کون ہے. یہ آتا ہے، آ کے میری صفائی کرتا ہے، میرا پانی بھرتا ہے، مجھے کھانا وغیرہ دیتا ہے، اور پھر یہ چلا جاتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرے کو کور بھی کیا ہوا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے نا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں ہو سکتا، اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے جو ہے वो नेकी और तकवा का एक बहुत बड़ा मायार जो है वो छोड़ कर जाएंगे। तो आप देखें कि किस तरह से नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और फिर हसरत करते थे, और बेस्ट फ्रेंड थे। आप अगर तारीख का मताला करें, जैसे मसलन अभी आपका क्विज होने वाला है सूरत नूर का और अहजाब का, अब 5 लोगों को सिर्फ ग्रुप इंचार्ज बनाया ना, बाकी लोग तो ग्रुप इंचार्ज नहीं है, बाकी तो टीम के अंदर हैं। हो सकता है आप बाकी लोगों में से किसी के जहन में ये ख्याल आया हो कि मुझे क्यों नहीं इंचार्ज बनाया उस्तादा ने, मुझे क्यों नहीं इंचार्ज बनाया। हो सकता है आपके जहन में से किसी के जहन में ये ख्याल आए। अब इस सिलसिले में आप देखें कि ग्रुप इंचार्ज बनाना तो एक जिम्मेदारी है ना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए और उसके बाद खलीफा बनाने की बात थी कि किसको खलीफा बनना मुकरर किया जाए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में बैत की और कहा कि खलीफा जो है अबू बकर को होना चाहिए। आपने सबसे पहले आगे बढ़कर इनका नाम दिया और फिर इनके हाथ में बैत की। और दूसरी तरफ देखें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की राय क्या थी कि उमर फारूक, फिर आपने एक नाम और दिया था अबू उबैदा का कि आप इनमें से किसी एक को जो है वो खलीफा मुकरर कर लीजिए। कैसी अच्छी दोस्ती थी, इस बात पे लड़ नहीं रहे थे कि फला इंचार्ज है तो उसको क्यों बनाया और मुझे क्यों नहीं बनाया। मैं ये नहीं कह रही, माशाल्लाह आप लोगों का मामला भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुर्सी, इक्तदार, आगे बढ़ना या ऐसी बात हो तो दिल में ख्याल आता है कि मैं नहीं इस जगह हो सकती। लेकिन वो कैसे नेक लोग थे, वो चाहते थे कि आपस में, जैसे उन्होंने उनका नाम दिया, उन्होंने उनका नाम दिया। और नेकियों में एक दूसरे के लिए फिक्र करने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद करने वाले। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने अपनी वफात से पहले आपने क्या किया था, मदीना की गलियों में आप घूमे, आप बद्दू से भी मिलते और पूछते कि अच्छा उमर के बारे में तुम्हारी राय क्या है, फिर आप सहाबा से पूछते कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ से और कभी अली से और कभी किसी से रदी अल्लाह अनु, और पूछते कि फलां के बारे में, उमर के बारे में तुम क्या सोचते हो। यहाँ तक कि आपने लोगों से मशवरा करने के बाद जो है फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अनु का नाम खिलाफत के लिए दिया और फिर कहने लगे कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि अबू बकर तुम किसे खलीफा बना के आए मुसलमानों का, तो कहते हैं कि मैंने जो, मैं अल्लाह ताला से कहूंगा कि अल्लाह ताला तेरे बंदों में जो सबसे ज्यादा तुझसे डरने वाला था मैं उसको खलीफा बना कर आया हूं। तो कितनी कितनी मोहब्बत की बातें हैं। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने अपने बेटों में से किसी को बना सकते थे ना, लेकिन आपने नेक और मुत्तकी शख्स का जो है वो इंतखाब किया। तो क्या है, वह अमल सालिहात, कि वो नेक अमल करते हैं। लहुम मगफिरतुन अजरुन कबीर, उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर है, बड़ा अजर है। आयत नंबर 8, अफमन जुय्यना लहू सू अमल ही फरआहू हसना। अब यहां पर जो है आप देखें कि ऊपर आपने आयात में देखा, पढ़ा आपने कि अल्लाह ताला ने आम लोगों को मुखातिब किया है। आम लोग कौन हैं, जो गलत रास्तों पर चलना चाहते हैं और जो है वो शैतान के पीछे चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईमान और अमले स्वाले की बात की आयत नंबर 7 के आखिर में। अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि एक बिगड़ा हुआ इंसान तो वो होता है जो बुरा काम तो करता है मगर मानता है कि ये बुरा काम है, कि मैं बुरा काम कर रहा हूं। ऐसा शख्स जो है जब उसको समझाया जाता है तो उम्मीद होती है कि वो नेकी की तरफ आ जाएगा। अच्छा, एक और शख्स होता है जिसका जहन इतना बिगड़ जाता है कि उसके अंदर नेकी और बदी की, बुरे की और भलाई की तमीज बाकी नहीं रहती। उसको लगता है कि बदी जो कर रहा हूं यही नेकी है। तो ऐसे शख्स को अगर आप समझाते हैं तो ऐसा शख्स समझाने से पलटता नहीं है, क्योंकि उसका जमीर जो है वो खत्म हो चुका है, उसका जमीर उसको बुराइयों पर मलामत नहीं करता। पहले शख्स जो है उसकी सिर्फ आदतें बिगड़ी हैं, जहन नहीं बिगड़ा। दूसरा शख्स कैसा है, जिसका जहन भी बिगड़ चुका है, नेकी में और बदी में उसको कोई तमीज नहीं रही। यहाँ पे अल्लाह ताला इन्हीं की मिसाल देकर कह रहे हैं कि अफमन जुयना लहू सू अमल ही फराहू हसाना, भला कुछ ठिकाना है उस शख्स की गुमराही का, भला उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है। अफमन जुयना, भला वो शख्स जिसके लिए खूबसूरत बना दिए गए, लहू उसके लिए सू बुरे अमल ही उसके अमल, यानी वो शख्स जिसके अमाल को उसके लिए जो है खूबसूरत बना दिया है, कौन से अमाल, सू अमल ही बुरे अमल, तो उस शख्स की गुमराही का क्या कहना जिसके बुरे अमाल उसके लिए खूबसूरत बना दिए गए। फराहू हसाना, और उसने उनको अच्छा समझा, यानी जो बुरे अमल हैं उनको वो समझता है ये बहुत अच्छे काम मैं कर रहा हूं। फइन अल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, फरमाया बस बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है। और यहाँ पे ये खास बात याद रखने वाली है कि अल्लाह का चाहना हदायत के लिए, इसके मानी क्या है कि जो हदायत चाहता है तो अल्लाह भी उसको हदायत देता है, क्योंकि जिसको तलब होती है तो अल्लाह उसको देता है, जिसको तलब ना हो तो अल्लाह उसको हदायत से महरूम कर देता है। यही दुनिया की नेमतें तो अल्लाह सबको देता है, लेकिन हदायत जो है वो उन्हीं को मिलती है जो हदायत चाहते हैं, वरना एक पैगंबर अपने बेटे को अपनी बीवी को उसके जो है वो ना चाहने की वजह से उसको हदायत नहीं दे सके, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को ना दे सके, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। फइन अल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, बस हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है। फला तजहब नफ्सुका अलैहिम हसरात, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामखा तुम्हारी जान इन लोगों की खातिर अफसोस में ना घुले। फला तजहब, बस ना निकल जाए नफ्सुका तेरी रूह तेरी जान, अलैहिम इन काफिरों के बारे में हसरात अफसोस करके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि इनके हदायत ना लाने पर आप अफसोस के मारे अपने आप को घुलाएं नहीं, आप अपने आप को परेशान नहीं करें। अब आप देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे, आप लोगों को हांके पुकारे दीन की दावत देते थे, और मक्का के लीडर क्या करते थे, वो आपका इनकार करते थे, आप दावत देते और वो दावत का इनकार करते। तो यहां पर जो है यही बात कही जा रही है कि इनका इनकार जो है वो आपको किसी गम में ना डाले, क्योंकि अगर किसी इंसान के सामने हक आए और वो उसको झुठला दे तो आप सोचें कि हक पेश करने वाले को कितना दुख होता है, और जो हक को झुठलाता है वो दरअसल बीमार है, इसलिए कि हक तो हक है लेकिन वो हक का इकरार नहीं करता। मसलन आप ही देख लें, जैसे आज मैं उस माँ की कैफियत पे गौर कर रही थी जो रो रही थी, जारो कितार रो रही थी कि अच्छी तरबियत की, अच्छे माहौल में इनको लिखाया पढ़ाया, और उसके बाद अब बच्ची इस बात को समझ ही नहीं रही कि ये अल्लाह की नाफरमानी है और कि उससे मेरी शादी नहीं हो सकती, और बल्कि कह रही थी कि बच्ची कहती है कि जो है वो जो बच्चे होंगे तो आपकी तरबियत में दूंगी ताकि आप उन्हें एक अच्छा मुसलमान बनाएं। तो असल बात यह है कि अगर अपनी सगी औलाद जो है वो पूरी कोशिशों के बावजूद अल्लाह की नहीं हो पाती तो कौन जाने और क्या जाने कि औलाद की औलादे जो है फिर उनका क्या बनेगा, है ना। ये तो, और वालदेन कौन है जो बना सके जब तक के अल्लाह ही ना बनाए, तो अल्लाह ही हदायत देता है और अल्लाह उनको देता है जो हदायत जो है वो चाहते हैं। तो यहाँ पे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये लोग शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान के फंदों में फंसते हैं, और शैतान जो नादान है उसको अपना दोस्त बनाते हैं और आपको अपना दोस्त नहीं बनाते, तो आप परेशान ना हो, आप इनकी खातिर जो है वो इन गम में मत भूलें। इन अल्लाह अली अलीम बिमा यसनाउन, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है, अल्लाह को खूब पता है कि ये लोग जो हैं इनका अमल क्या है और इन लोगों का क्या کردار کیا ہے. تو یہ اس آیت میں بھی آیت نمبر 8 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے کہ میں ان کے جو جرم ہیں جو ان کے گناہ ہیں میں ان کی خبر لے کر رہوں گا. ان اللہ علیم بما یصنعون. پھر آیت نمبر 9 اور 10 جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے حشر اور نشر کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتسیر صحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. تو آپ دیکھیں جو کذالک النشور ہے نا کہ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 کے شروع میں مثال دی ہے. مثال کیا دی ہے؟ واللہ الذی, اور اللہ تو وہی ہے, الذی جس نے ارسل الریاح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, یعنی جس نے رسولوں کو بھیجا کتاب دے کر, فرشتوں کو بھیجا رسولوں کے پاس وحی دے کر, وہی اللہ تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ فتسیر صحابن, پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. سا و را اس کا روٹ ہے, سور بادل کو بھی کہتے ہیں. بادل کیا کرتا ہے؟ مٹی جو ہے اس میں ہل چلاتا ہے, اور بیل جو ہے سا و را سور بیل کو کہتے ہیں نا, تو بیل کے زمین میں ہل چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ مٹی اوپر کو اٹھتی ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ تسیرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اوپر اٹھنے کے لیے. فرمایا کہ ہوائیں جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں کس کو؟ صحابن, بادلوں کو. اور سین حابا اس کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا, تو بادلوں کو ایسے اٹھا کر لے جاتی ہیں جیسے کہ گھسیٹتی ہیں. فسک نہ ہو, پھر فرمایا کہ پھر ہم جو ہیں چلاتے ہیں اس کو. سین و قاف اس کا روٹ ہے سوق, اور اسی سے جو ہے ہانکنا, جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہے نا, تو اسی طرح یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لے جانا, پانی پلانا, سیراب کرنا. فسک نہ ہو, پھر ہم انہیں جو ہے وہ چلاتے ہیں. الا بلد میتن, ایک ایسی زمین کی طرف جو کہ مردہ ہے. پھر ہم ان بادلوں کو, یعنی جو ہواؤں نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں کبھی آسمان کی طرف بادلوں کو دیکھیں, ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان کو اٹھا کر لے جا رہا ہے نا, اور بڑے کشاں کشاں وہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہوائیں ہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کو لے جاتی ہیں. کہاں لے کے جاتی ہیں؟ بلد میتن, بلد شہر کو کہتے ہیں اور میت مردہ کو. تو ایک اجاڑ علاقے کی طرف وہ بادل جاتے ہیں, ہوائیں لے کر جاتی ہیں. فاحیینا, پھر ہم جو ہے وہ ہم نے زندہ کیا. بہل اردا, اس کے ساتھ زمین کو. بعد موتیہا, اس کی موت کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بادلوں سے بارش برسا کر خشک اور مردہ زمین کو ہم شاداب کر دیتے ہیں, سرسبز کر دیتے ہیں. اسی طرح قیامت والے دن تمام مردہ انسانوں کو ہم زندہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے, صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے, اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہوگی. کلو جسدی ابن آدم یبلا الا عجب الذنب منہ خلق و منہ یرکب, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو کہا کہ جس طرح بارش کے قطرے اور بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے, کھیتی ہریالی بہار آ جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ لوگ جو مر کر گل سڑ گئے ہوں گے, ختم ہو گئے ہوں گے, اللہ ان کو جو ہے وہ زندہ کرے گا تاکہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ لے سکے. تو اسی طرح انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سور پھونکیں گے تو انسانوں کی جو سروں کی فصل ہے جو زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی ہے پھر وہ جو ہے وہ باہر نکل کر کھڑی ہو جائے گی. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ فالذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہوا یبور. اب یہاں پر جو ہے ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के यहां क्या चीज काम आएगी। और वो क्या है? कलमा तैयबा, कलमा तौहीद। कलमा तैयबा ही है कि जिसकी वजह से जो है वो अमले सवाले जो है उनको बुलंदी हासिल होती है, और आखिरत की इज्जत जिसको चाहिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ईमान लाएं और अमले सवाले की राह इख्तियार करें। और अगर कोई इससे हटकर रवैया अख्तियार करता है तो सवाए फरेब नफ्स के तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले फैसला कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। आप सोचिए, अपने आप से पूछें, आप नोट करें कि मैं क्या चाहती हूं। अच्छा, अब आप कहेंगी कि मैं तो, मेरा दिल तो चाहता है कि मुझे जो है वो जन्नत मिल जाए। तो मुझे ये बताएं, क्या चाहने से जन्नत मिल जाएगी? किसी चीज के चाहने से वो चीज तो नहीं मिलती जब तक कि उसके लिए तैयारी ना की जाए, जब तक कि उसके लिए कोशिश ना की जाए। अब यहां पर भी यही बात रखी जा रही है कि मन का ना, जो कोई हो, यूरीदू इरादा रखता अल इज्जत का, इज्जत का, कि जो कोई इज्जत चाहता हो तो उसको चाहिए, उसे ये याद रखना चाहिए फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, कि इज्जत सारी की सारी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। मसलन आप देखें कि चाहते तो हैं कि जन्नत मिल जाए, लेकिन सिर्फ चाहने से तो जन्नत नहीं मिलती। मसलन आप में से जो डॉक्टर बने हैं, या आप में से कुछ लोग जो हैं वो आईटी के हैं, या डाइटिस्ट जैसे डाइटिशियन जो हैं, या जो है वो थेरेपी करने की का कोर्स किया, या आपने टीचिंग का किया है, कुछ भी किया है, तो क्या आपके चाहने से ये मिल गया? मसलन आप में से कुछ लोगों ने सोचा हम यहाँ पे इमिग्रेशन में आ जाते हैं, तो क्या चाहने से मिल जाती है? कुछ कंडीशंस होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ सिलेबस होता है, कुछ इम्तहान होता है, कुछ उसकी तैयारी होती है, बड़ी जो है वो मेहनत तो मुशक्कतों के बाद दुनिया का एक गोल जो है वो मिलता है। अब आप देखें कि इज्जत, इज्जत किसके मिलेगी? सिर्फ अल्लाह के पास। अब आप देखें कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है, उसके यहां जो चीज ऊपर चढ़ती है यही यस अदो, तो स्वाद आइंदाल जो है इसका मतलब है चढ़ना। तो उसके यहां जो चीज ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ना, सईद मट्टी को भी कहते हैं, और सऊदा जो है यानी बुलंदी की तरफ चढ़ना, तो उसके यहां जो चीज ऊपर चढ़ती है वो क्या है? अल कलेमु तैयबु, पाक कलमा, पाकीजा कलमा। तो तैयब जो है ये इशारा है जरखेजी और शादाबी की तरफ। बल अमल उस सवाल हूं, इससे क्या मुराद है? जैसे तस्दीक कल्बी, फिर उसके साथ अमाल सवाले, और ऐसे अमाल जो जाहरी तौर पर भी हों और बातनी तौर पर भी। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक है अल कलिमु तैयब और दूसरा है वल अमल सवाले यरफाहू, यानी उसके यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, अल्लाह उनको कबूल करता है। तो अल कलिम जो है इसका वाहिदा कलिमतुन, और पाक कलमात से मुराद है अल्लाह की तस्बीह, तहमीद, तिलावत, नेकी का हुक्म देना, बदी से मना करना। तो जो पाक कलिमात होते हैं, जो अमले स्वाले होते हैं, फरिश्ते उनको लेकर अल्लाह के पास जो हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं। इसके ये मानी है कि ऐसे अमाल जिनका अकीदा ठीक होता है, जैसे कलमा तैयबा, अल्लाह की जात सिफात का इल्म, अमले सवाले, तो फिर ही अल्लाह जो है वो उनको अल्लाह के पास वो पहुंचते हैं। ऊपर चढ़ने के मानी क्या है? जैसे हमें अहदीस से ये बात भी पता चलती है कि आसमान जो है, सातों आसमान है, तो उन आसमानों पर कुछ फरिश्ते हैं जो कि निगरान के तौर पर बैठे हुए हैं, और वो उन्हीं अमलों को ऊपर ले जाने की इजाजत देते हैं जो अमल ठीक होते हैं। जो अमल ठीक नहीं होते वो अमल ऊपर नहीं चढ़ सकते। मुफस्सरीन कहते हैं पाकीजा कलमात में सबसे पहले कलमा तैयबा आता है। मानी क्या है? शिर्क का रद, कि शिर्किया अमाल जो है वो छोड़ दिए जाए, फिर अल्लाह का जिक्र, दुआएं, कुरान की तिलावत वगैरह, ये कलिमात हैं जो सही हैं, अकवाले पाकीजा। और फिर नंबर 3, अच्छी बातों की यानी अकवाले पाकीजा की قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ اعمال صالحہ پر ہے، اور اس کے لیے آپ جو ہیں خباب بن ارت کی مثال کو آپ یاد رکھیں، اس کے لیے آپ جو ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال کو آپ یاد رکھیں، اور مسلم خولانی تھے، یہ تابعین میں سے تھے اور یمن کے رہنے والے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اسود انسی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے بھی اس کو مانا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور وہ کہتا تھا کہ جو مجھے آخری نبی نہیں مانے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور اسے پتا چلا مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا، اور مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام تھا عبداللہ بن ثوب، ثوب کپڑے والا، تا وبا، اور یہ جو ہے وہ مسلم خولانی کے نام سے بڑے مشہور ہوئے، تو ان کے بارے میں پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ مانتے نہیں ہیں مجھے نا، تو اس نے کیا کیا اسود انسی نے کہ اس نے ان کو بھی بلوا بھیجا، اور ساتھ ہی اس نے آگ کا بہت بڑا الو تیار کیا اور کہا کہ میں جو ہوں اگر تم میری بات مان لو تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم مجھے آخری نبی نہیں مانتے تو یہ جو آگ ہے نا اس کے اندر میں تمہیں جو ہے وہ پھینک دوں گا، تو لیکن حضرت جو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اس کا تمہاری اس بات کو میں نہیں مانتا، پر میں تمہاری اس بات کا انکار کرتا ہوں، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، آخری اللہ رسول نہیں ہو، آخری رسول نہیں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کوئی اس کے بعد نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں آ رہا تھا، اور یہاں تک کہ پھر اس کے ایک شخص نے اس کو کہا کہ جو ہے تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اور ان کے مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، کہ جو دعا کرتے ہیں یہ قبول ہو جاتی ہے، تو اسود انسی جو ہے اس کے ایک ساتھی نے اس کو کہا کہ دیکھو تم اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم اس کو آگ میں جلا بھی دیتے ہو تو اس کی استقامت کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہیں تمہارا انکار کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر آگ کچھ اثر نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے ڈر کر ان کو چھوڑ دیا، آگ میں ڈالا ہی نہیں اور کہا کہ بس تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ نا، اور دوسرا کہتے ہیں کہ آگ ان کے لیے جو ہے نا ٹھنڈی بن گئی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلو گلزار بنایا تھا، اور یہ مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی کیا تھی، ایک کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کے ایمان کی حفاظت کی جیسے اصحاب کہف کی حفاظت کی تھی، کہ جب وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں گئے، وہ غار میں جا کر چھپے تھوڑی تھے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے غار میں گئے تھے، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ کئی سال وہ اس کے اندر ایسے سوئے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی وہ حفاظت کی تھی، تو اصل بات جو یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ پاکیزہ کلمات ہوں اور عمل صالح ہوں، یعنی جن کے اندر شرک نہ ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو ایسے کلمات جو ہیں وہ فرشتوں ان کو اوپر لے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر کسی کے عمل تو اچھے ہوں عقیدہ اچھا نہ ہو تو بھی اوپر نہیں چڑھ سکتے، عقیدہ اچھا ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو تو بھی وہ اعمال جو ہیں وہ اوپر نہیں چڑھ سکتے، تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ پاک کلمات ہوں اور عمل صالح ہوں، تو پھر اللہ کے ہاں وہ اوپر چڑھنے کی فرشتے جو ہیں ان کو اوپر لے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور فرشتے ان اعمال کو اوپر لے کر جاتے ہیں، تو دراصل یہ انجام بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، یعنی دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دیتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں نا، اور آخرت میں بھی اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت اور آبرو ہے، اور اللہ ہی وہ عزت دینے والا ہے، آپ نے سورۃ نساء کی آیت 139 میں بھی پڑھا تھا ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جميعا، اسی طرح سورۃ یونس کی آیت 65 میں پڑھا تھا ولا یحزنک قولہم ان العزت للہ جميعا، تو اچھا اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ جو ہیں وہ عزت چاہتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ سچی عزت چاہتی ہیں تو عزت اللہ کے پاس ہے، اور اچھی باتیں اور نیک عمل وہ انہیں بلندی ملتی ہے، وہ اللہ کے ہاں اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اب آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہیں کتنی تاریخ نے عزت دی ہے، کوئی حسن نہیں تھا، دولت نہیں تھی، موٹے موٹے ہونٹ، کالی رنگت اور زمین نہیں، جائیداد نہیں، کچھ حیثیت نہیں تھی، کیا فقیری تھی نا. اور آپ دیکھیں کہ قریش قبیلے کے اور باقی مکہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ انہیں کیا کہتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کہتے تھے کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار. تو عزت کس نے دی؟ عمل صالح نے عزت دی نا، کلمہ طیب، عقیدہ توحید نے ان کو عزت دی نا. اسی طرح آپ خباب بن ارد کو دیکھ لیجئے. تو اصل بات کیا ہے کہ نمبر ایک، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ اسے قبول کرتا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ فرشتے کلمات ذکر کو لے کر اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پر دو لفظ بڑے اہم ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یس ادو، یس ادو کا مطلب ہے کہ اوپر چڑھتے ہیں، ہے نا. اور دوسرے لفظ ہے یہاں پہ یرفعہ. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں یہ دونوں لفظ جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یسعدو کا مطلب ہے چڑھنا اور یرفعہ کا مطلب ہے بلند کرنا اس کو. تو اس کے معنی ہے کہ عمل صالح جو ہیں جب اللہ تک پہنچتے ہیں تو پھر اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اچھے عمل ہیں، عمل صالح ہیں. تو فرائض کی پابندی کرنا، نیک عمل کرنا، ذکر الہی کرنا، مفسرین کہتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ اگر ذکر الہی کیا جائے، اللہ کو مستقل یاد کیا جائے، تو اس سے عمل صالح جو فرائض ہیں نا ان کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. اور جو لوگ فرائض کی پابندی نہیں کرتے ان کے اذکار ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. تو اصل بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت چاہیے تو اللہ سے، اور آخرت میں بھی عزت چاہیے تو اللہ سے. اور بڑا مشہور واقعہ بیت المقدس کی فتح کا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوئی تو آپ کو بلایا گیا تھا کہ امیر المومنین آئے، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، معاہدہ کرنا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو آپ اس وقت جب آپ فلسطین میں داخل ہوئے بیت المقدس کے علاقے میں تو آپ اس وقت چل رہے تھے اور آپ کا جو نوکر تھا وہ سواری پر تھا، کیونکہ آپ نے راستہ میں سفر جو کیا تو باری باری کہ پہلے ایک اوپر پھر دوسرا نیچے پھر ایک نیچے پھر دوسرا. اب بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو اس نوکر اور غلام کی باری تھی کہ وہ سواری کے اوپر بیٹھے، تو وہ اوپر تھے اور آپ اس کی مہار تھام کر چل رہے تھے. آپ کے جوتے بھی پرانے پھٹے ہوئے اور آپ کے کپڑے اس میں پیوند لگے ہوئے. صحابہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کا یہ حال ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا ایک لباس تیار رکھا تھا کہ آپ اس کو پہنے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بڑا خوبصورت جواب دیا اور جو تاریخ کے اندر ایک ضرب المثل بن گیا. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کہ اللہ تمہیں اس وقت عزت دے گا جبکہ تم قرآن کو تھام کر رکھو گے، اور جب تم اس قرآن کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. اور آج دیکھ لیں، آج دیکھ لیں کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے. مسلمانوں نے جو ہے وہ اللہ کے در کے آگے جھکنا چھوڑا ہے اور دوسروں کے آگے جھکتا ہے. فنڈ مانگنا، پیسے مانگنا، بھیک مانگنا، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ یعنی اپنے ایمان کو بھی بیچ دینا، ملک کو بھی بھیج دینا، اپنے عوام کو بھی بیچ دینا، اور پھر کیسے کیسے جو ہے وہ آج کا مسلمان جو ہے وہ سودا کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم ذکر کرنا چاہیے، عقائد درست کرنے چاہیے اور پھر اعمال صالح کرنے چاہیے. تو قول بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اللہ پھر اس کو قبولیت بخشتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے. یہ ہے اصل پیغام جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اس وقت ہم ضروری ہے اس بات کا یہ بات ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ میرا میں چاہتی کیا ہوں, میں دنیا چاہتی ہوں یا پھر اللہ کے ہاں عزت چاہتی ہوں. کیونکہ جیسے انسان نیت ہوتی ہے پھر ویسے ہی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. رہے وہ لوگ جو بہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے یمکرون السیئات؟ مفسرین نے یمکرون السیئات کے معنی بتائے ہیں کہ اس سے مراد ہے باطل کلمہ, کلمہ شرک اور باطل اعمال, ایسے تمام اعمال جو کلمہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو فرمایا لہم عذاب شدید کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے, وہ مکر اولئک ہوا یبور اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. یبور جو ہے اس کا روٹ ہے با ورا, اس کے معنی ہے ہلاک ہو جانا. آپ ذرا دیکھ لیں کہ قرآن کے اندر ایک کمپیریزن ہے, دو عقائد ہیں, ایک ہے عقیدہ حق اور ایک ہے عقیدہ باطل. اسی طرح جو ہے دو طرح کے اعمال ہیں, آپ نے پیچھے ہی پڑھا تھا آمنو و عمل الصالحات, اور دو ہی انجام ہیں, نمبر ایک الذین کفروا لہم عذاب شدید, دوسرا لہم مغفرت و اجر کبیر. تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے, نیک اعمال کرنے چاہیے, کیونکہ عقیدہ شرک رکھنے والے جو ہیں ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. پھر آیت نمبر 11 سے 18 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد, رزق و فضل یہ اللہ کا عطیہ ہے, اسی طرح عمر کی زیادتی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے, کسی بت اور تمہارے کسی معبود کے پاس یہ اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جو چیزیں ہیں, اللہ کی جو اختیارات ہیں ان میں کوئی دخل دے دے. پھر اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کائنات کے اندر جو ہے ایک تضاد ہے, تضاد بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں ایک موافقت بھی ہے, تضاد کے ساتھ ایک موافقت بھی ہے, جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم. اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 11 ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دلیل دی ہے انسان کے اپنے وجود سے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے جو ہے تم کو پیدا کیا, کس سے؟ من ترابن, مٹی سے. اب پھر اس کا دوسرا درجہ ہے کہ ثم من نطفتن, پھر نطفے سے. کہ انسان کبھی تم نے غور کیا کہ کس نے تم کو پیدا کیا؟ تو اس میں جو ہے پہلی چیز کیا ہے, مٹی سے پیدا کیا, دوسری چیز پھر اس کی نسل جو ہے وہ ایک نطفے سے چلائی. ثم جعلکم ازواجا, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو ہے وہ جوڑے بنا دیے. یہ ہے اصل بات جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے, اور مراد ہے آدم علیہ السلام, پھر اس کے بعد نسل انسان کی جو ہے وہ نطفے سے آگے چلی. اور آپ دیکھیں کہ نطفہ جو ہے مرد کی پیٹ سے نکل کر عورت کے رحم کے اندر جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, ثم جعلکم ازواجا, پھر تمہارے جوڑے بنائے مرد اور عورتیں. وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلم. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں, وما تحمل من انثى, کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی, उनका जो है ये मादा औरत को कहते हैं, और यहाँ पे ये जिक्र किया जा रहा है कि कोई भी जो मादा हामिला होती है, नंबर दो, वला कदाउ इल्ला बेल्मी, और नहीं वो जनती बच्चे को मगर वो अल्लाह के इल्म में होता है। तो कोई भी मादा जब हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, या वो बच्चा पैदा करती है, तो अल्लाह जो है वो उसको जानता है। अच्छा, अब आप देखें कि मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो मादा का जिक्र है, इससे मुराद जो है वो सिर्फ औरतें ही नहीं हैं, बल्कि इसमें जानवर भी हैं और दूसरी तमाम ऐसी मखलूकात जो कि बच्चे को पैदा करती हैं। तो सबका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि इन सब के बारे में कौन जानता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह जानता है। ये क्या है, बाज़ औक़ात आप देखेंगे खुद मादा को, औरत को भी पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला को जो है वो पता है। तो ये दरअसल ये अल्लाह के इल्म की वुस्त जो है उसको बताया जा रहा है। फिर मजीद मिसाल दी, वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, वमा युअम्मरु, और जो कोई भी, युअम्मरु ये मुअम्मर उम्र से है, और जो कोई भी जिसको उम्र दी जाती है, मिन मुअम्मरिन उम्र वाले को, तो ऐन मीम रा से है कि कोई भी जो है जिसको उम्र दी जाती है, यानी जिसकी जो है वो उसको उम्र मिलती है, वला यनकुसु मिन उम्र उम्रही, और नहीं कमी होती उसकी उम्र में से, इल्ला फी किताब, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा हुआ है, इन्ना ज़ालिका लल्लाह यसीर, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। अब आप देखें कि लोहे महफूज में क्या लिखा हुआ है। नंबर एक, कि किसी की उम्र जो है वो तवील होगी या उसमें कमी होगी, इसके एक मानी तो ये है, यानी वमा युअम्मर मिन मुअम्मर, अगर किसी की तवील उम्र है तो भी उसके अंदर लिखी हुई है, भला युनकसु मिन उम्र ही, और अगर उसकी उम्र में कुछ कमी है तो भी उसमें लिखी हुई है ना। फिर बाज लोग जो है वो ये भी कहते हैं के इसके एक मानी तवील उम्र के हैं, और इसके बारे में एक राय ये भी है कि इससे मुराद है नेक औलाद, क्योंकि अगर जो है वो किसी की नेक औलाद है, तो नेक औलाद जो है वो क्या है कि वो उसके लिए सदका जारिया बनती है। और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो सिला रहमी करता है, नेक अमल करता है, तो उसकी उम्र जो है वो लंबी होती है। इस सिलसिले में हमें अहदीस भी मिलती हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र तवील हो, तो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करे। और बाज लोग कहते हैं कि ये उम्र की तवालत जो है, इससे मुराद ये नहीं है कि किसी की उम्र बढ़ गई, यानी तवील उम्र किसी को दी, बल्कि जो भी अल्लाह ने उसको उम्र दी है, उसकी उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रख दी है। आप देखें कि बाज लोगों की उम्र में और उनके वक्त में इतनी बरकत होती है कि वो थोड़ी देर के अंदर बहुत काम करते हैं। तो ये सारे मानी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं कि उनकी उम्र में, उनके वक्त में अल्लाह ताला ने बहुत ही बरकत अता की है। अब आप देखें कि उम्र की ज्यादती के बारे में, कि इससे मुराद जो है वो सवाले औलाद है। मैं आपको हदीस सुनाती हूँ कि अल्लाह ताला इसको औलादे सवाले अता करते हैं जो इसके लिए दुआ करते रहते हैं। ये शख्स नहीं होता, दुनिया में नहीं होता, लेकिन इसकी औलाद की दुआएं इसको कब्र में मिलती रहती हैं, मरने के बाद इसको फायदा पहुंचता रहता है। ऐसे ही है जैसे जिंदा रहने से फायदा हो, और इस तरह गोया इसकी उम्र बढ़ गई। तो बाज लोगों ने औलाद की नेकियों को भी किसी की उम्र का बढ़ना जो है, या उम्र में बरकत जो है, उसको जो है वो करार दिया है, ये माने भी इसके बयान किए जाते हैं। इन्ना फी ज़ालिका अल्लाह यसीर, और ये सब कुछ जो है वो अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह जो चाहे करे। अब आप देखें कि मखलूक के बारे में इतना तफसीली इलम और फर्द फर्द के बारे में इतने मुफसिल अहकामात और फैसले करना, ये अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है, अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 12 है, और यहां पर भी जो है वो एक और अहम दलील दी गई है, और ये है समंदर की। मैंने आपको बताया ना कि इस सूरत के अंदर आप देखें तो बहुत सा जैसे कंपैरिजन की मेथोडोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की गई है। दो रास्ते हैं, दो किरदार हैं। अब इसके बाद आप देखें वमा यस्तविल बहरान, और नहीं है बराबर दो दरिया। बहरान दो दरिया की बात हो रही है, एक नहीं। तो पानी के दो जखीरे या दो समंदर एक जैसे नहीं होते। यस्तवी सीन वो या बराबर होना। हाजा अजबुन फुरातुन, ये एक मीठा पानी है। सायगुन शराबहु, खुशगवार इसका पानी। अब आप देखें कि पानी का जो एक जखीरा है उसकी सिफात क्या है। नंबर एक अजबुन मीठा, नंबर दो फुरात प्यास बुझाने वाला, नंबर तीन सायगुन। सायगुन जो है सीन वो गैन, इसका मतलब होता है कि जैसे सौगी होना, हलक से आसानी से उतरना, घटाघट किसी चीज को पी जाना, खुशगवार मशरूब का हलक से नीचे होना, रचता बसता। तो ऐसा मीठा प्यास बुझाने वाला एक समंदर है कि सायखुन खुशगवार, हलक से उतरने वाला, पीने में खुशगवार, शराब हो उसका पीना। दूसरा कैसा है, वहाजा मिलहुन उजाज, और दूसरा जो पानी का जो समंदर है वो क्या है, मिलहुन खारी, उजाज कड़वा। तो दूसरा सख्त खारी है। अब आप देखें कि उजाज जो है हमजा जीम, जीम इसका रूट है, सख्त कड़वे के लिए आता है। तो दूसरा पानी जो है वो कैसा है, खारी के हलक को छील दे। ममिन कुल्लिन ताकुलूना लहमन, और फरमाया कि हर एक से तुम खाते हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ममिन कुल्लिन और हर एक से, यानी ये दोनों तरह का जो समंदर का पानी है दोनों से, ताकुलूना तुम खाते हो। नंबर एक लहमन तरियन, गोश्त ताजा, तरियन जो है त्वारा वो, त्वारा या भी इसका रूट है, ताजा को कहते हैं, कि दोनों से तुम ताजा गोश्त खाते हो। नंबर दो वतस्तखरिजूना हिलियतन, और तुम तस्तखरिजूना तुम निकालते हो, हिलियतन जेवर, और हिलियतन जो है हालाम या जेवर को कहते हैं। इसी से होता है ना कि आप जरा अपना हुलिया दुरुस्त कर लें, तो हिलिया जेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी से तुम जेवर निकालते हो, जीनत की चीजों को निकालते हो, तलबसूना जिसको तुम पहनते हो। अब आप देखें कि आम तौर पर ज्यादातर जो मशहूर है वो ये है कि ऐसे समंदर जिनका पानी कड़वा होता है उससे मोती निकलते हैं, मीठे पानी में बहुत कम निकलते हैं, लेकिन दोनों से निकलते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र किया है कि ये दोनों मेरी कुदरत की निशानियां हैं, और इनसे जो है तुम क्या करते हो कि गोश्त भी लेते हो और उसके साथ हीरे जोहरात मोती जो है वो पानी के अंदर से उसकी तहों से जो है तुम निकालते हो। फतर अल फुल्का फीही मवाखिरा लितबतगू मिन फजलिहि वलअल्लकुम तशकुरून, और इसी पानी में वतरल फुल्का, और तुम देखते हो कि चलती हैं कश्तियां। फीही इस पानी में मवाखिरा, मीम खारा, और इसके मानी होते हैं पानी का जो है वो जमीन को चीरना और चक्कर लगाना। तो पानी को चीर कर चलने वाली कश्ती के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहां पे कहा और तुम देखते हो कि चलती हैं कश्तियां, फी ही इसमें मवाखिरा फाड़ती हुई, तो पानी को फाड़ना, जैसे कश्ती जब पानी में चलती है ना तो पानी से रास्ता बन जाता है ना, तो कहा जा रहा है कि फिर तुम देखते हो कि कश्तियां जो है पानी के सीने को चीरते हुए चलती है, मवाखिरा भीमखारा चीरना पानी को फाड़ना, तब तगू मिन फजल ही ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, तो ही की जमीर अल्लाह के लिए आई है, वल्ला अल्लकुम तशकुरून और तुम उसके शुक्र गुजार बनो। अब आप जरा गौर करें कि अब तक सूरत फातिर में आयत नंबर 12 तक आपने पढ़ा है और अल्लाह ताला का जिक्र आया है और बार बार आया है, कहीं अल्लाह का नाम लेकर और कहीं जमायर है जो अल्लाह के लिए आई हैं, और मकसद क्या है, वल्ला अल्लकुम तशकुरून, शायद के तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र की दावत दी जा रही है, और मैंने आपको शुक्र की 5 बुनियादें बताई थी। नंबर 1, फरोतनी, फरोतनी फरोतनी का मतलब होता है झुकना। नंबर 2, मोहब्बत। नंबर 3, अल्लाह की नेमतों का मोतरिफ होना, एतराफ। नंबर 4, अल्लाह की नेमतों की बिना पर अल्लाह की तारीफ करना। और नंबर 5, अल्लाह की अता करदा नेमतों को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना जहां अल्लाह चाहे कि उनको इस्तेमाल किया जाए। अल्लाकुम तशकुरून, तो ये सारी नियमतों का जिक्र क्यों किया जा रहा है, ताकि अल्लाह ताला के अता गुजार बंदे बनकर जिए। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सखर अश-शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा। अब जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कायनात से मिसाल दे रहे हैं कि वही तो है जो दिन को रात के अंदर दाखिल करता है, वो लाम जीम वाला जा का मतलब होता है तंग चीज में दाखिल करना, वो दाखिल करता है रात को दिन में, नहारा फिर लेनी और दाखिल करता है दिन को रात में, तो ये रात और दिन का आना जाना ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी रोशनी घटनी शुरू होती है, रात की तारीकी बढ़ने लगती है, पूरी कायनात पर रात छा जाती है, फिर रात के आखिर में दोबारा हल्की सी रोशनी नमूदार होती है और आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी पूरी कायनात पर बिखर जाती है। ये करने वाला कौन है, इस कायनात को, इस जाब्ते का पाबंद किसने बना रखा है, अल्लाह ताला ने। मुसख्खरा शम्स वल कमर, चांद और सूरज को उसी ने मुसख्खर कर रखा है, चांद रात को निकलता है और सूरज दिन को। कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा, ये सब कुछ एक वक्ते मुकर्रर तक चले जा रहा है, मानी है एक जाब्ते के ये पाबंद है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, वही है अल्लाह जिसके ये सारे काम है, ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा रब, लहुल मुल्क इसी की बादशाही है। वल्लज़ीना तद'ऊना मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, और वो लोग अल्लाह के सिवा जिसे पुकारते हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर जिसे पुकारते हैं, मा यमलिकूना, वो इख्तियार नहीं रखते, इनके माबूद मालिक नहीं है, मिन कितमीर, खजूर की गुठली के छिलके के। तो कितमीर जो है वो बारीक सा छिलका जो गुठली पर होता है, वो बारीक सी डोरी जो खजूर की गुठली के सुराख में होती है, तो ये है कितमीर। तो इंतहाई हकीर चीज के लिए कितमीर आता है, जैसे खजूर के ऊपर देखिए एक झिल्ली सी होती है ना, जब आप खजूर खा लेती हैं तो गुठली पर एक झिल्ली होती है, खजूर पर और उसकी गुठली में एक झिल्ली होती है, तो ये पतला सा जो छिलका ये झिल्ली है ये क्या है, एक लिफाफे की तरह पूरी गुठली पर चढ़ा हुआ होता है, होता क्या है, बहुत बारीक सा, कोई उसकी हैसियत नहीं है। तो यहां पर हकीर चीज की जिक्र किया जा रहा है कि ये तुम्हारे माबूद है, ये कितमीर खजूर की गुठली के ऊपर जो हकीर सा छिलका सा या झिल्ली सी है ना जिससे वो लिपटी हुई है, इसके बराबर भी उनकी हैसियत नहीं है। इन तदउहुम ला यस्माउ दुआकुम, और अगर तुम इन्हें पुकारो तो ये तुम्हारी दुआओं को सुन नहीं सकते। तदउहुम हुम की जमीर किसके लिए आई है, बुत अंबिया फरिश्ते सबके लिए, जिसको लोगों ने अल्लाह को छोड़कर खुदा बनाया। ला यस्मऊ दुआकुम, ये तुम्हारी दुआएं नहीं सुन सकते। वलौ समिउ, और अगर ये सुन ले, मस्तजाबुलकुम, तो इनका तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है, अव्वल तो ये कि सुन ही नहीं सकते, है ना। अब ये नहीं है कि उन्होंने सुन लिया तो कबूल हो गई, असल बात क्या है, कोई हैसियत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी दरखास्तों पर कार्रवाई करने का कुछ इख्तियार ही नहीं रखते, ना उनको कबूल कर सकते हैं ना रद्द कर सकते हैं। तो फिर क्या है, ये जो है नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यौम अल कियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और कयामत के दिन ये तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और नहीं खबर देगा तुझको मानिब बा खबर के, और हकीकते हाल की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबरदार के सिवा कोई नहीं दे सकता। और ये खबरदार कौन है? अल्लाह ताला। यहाँ पे मिसलो खबीर, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो अल्लाह तुम्हें बता रहे हैं कि मुशरिकीन के जो माबूद हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके कोई इख्तियारात नहीं है, ये नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारी बिगड़ी संवार नहीं सकते, तुम्हारी समरी बिगाड़ नहीं सकते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कयामत के दिन मुशरिकीन के ये माबूद इनके शिर्क की तरदीद करेंगे। और ये अल्लाह ताला जैसे ये सही बातें बता रहे हैं ना, कोई और नहीं बताने वाला, तो लोगों क्या करो, फिर तुम सब जो है वो अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करो। तो आयत नंबर 1 से लेकर 14 तक इसमें एक ही पैगाम दिया गया है, और वो ये है कि अल्लाह की बंदगी की जाए, तौहीद परस्त बना जाए, और जो बंदगी करेगा अपना ही फायदा करेगा। नंबर 2, शिर्क को छोड़ा जाए, और अहले मक्का भी जिन हस्तियों को पूछते थे उनके पास कोई सिफात नहीं, कोई इख्तियारात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कोई उनकी हैसियत नहीं है। और फिर कायनात से निशानियां देकर ये बात बताई गई है कि लोगों, तुम खालिक मालिक हाकिम इक्तदार रखने वाले रब की तरफ रुजू करो, जिसके सामने तुम सबको लौट कर जाना है, और अल्लाह के पास अपने आप को जिम्मेदार समझो। तो नबी का काम क्या है? हदायत देना नहीं है, नबी का काम जो है सिर्फ तुम्हें समझाना है, और अब मानना या ना मानना ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो ये थी सूरत अल फातिर की, सूरत फातिर की, ये थी सूरत फातिर की इब्तदाई आयात, जो हमें एक ही पैगाम देती हैं कि हम ईमान लाएं और अमले सवाले करें। और अब आप देख लें कि आपका अकीदा कैसा है, और फिर अकीदा क्या है, कलमा तैयब, फिर आप ये भी देख लें कि आपके अमाले सवाले कैसे हैं, क्या वो अल्लाह कबूल कर लेगा, कहीं उनमें कोई शिर्क तो नहीं है, कहीं उनमें कोई रियाकारी और दिखावा तो नहीं है, कहीं उनमें गुनाह तो नहीं है, कहीं शैतान को दोस्त तो नहीं बनाया, दोस्त तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बनाना था। अब आपको फैसला करना है कि आप जो हैं वो कहां पे खड़ी हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।